फिर उसके बाद आयत 44 से 46 में रोज़े क़यामत जुल्म करने वालों का इंजाम क्या होगा? ऑफ कोर्स जहन्नुम में जाएंगे। वो ऐसे लोग हैं कि जहाँ उनको वो दूसरे दिखेंगे जिन पे जुल्म किए, ये सारे एक दूसरे को पकड़वा रहे होंगे, पकड़ धकड़ होगी। और इसमें जो सबसे अहम हिस्सा है इसको नोट कर लीजिए, वक़ालल्लज़ीन आमनू, और कहेंगे ईमान वाले, इन्नल खासिरीन, बेशक बैंकरप्ट, खसारा पाने वाले कौन है? अल्लज़ीन खसिरू अनफुसहुम, वो जिन्होंने अपने आप को भी नुकसान में डाला, वाहलीहिम, और अपने घर वालों को भी, यौमल क़ियामा। ज़रा से इस पे चंद सेकंड सोचिए, एक मर्द होने के नाते क्या मैं अपनी बीवी को गुनाह पे मजबूर तो नहीं करता? शोहर होने के नाते बीवी के हकूक पूरे कर रहा हूँ? और औरत होने के नाते क्या मैं अपने शोहर और अपने बच्चों के मामले में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं करती कि कल मेरे साथ वो भी डूबे? यानी ये बहुत अहम आयत है। बंदा अकेला नहीं जाएगा आग में, साथ घर वालों को लेकर जाएगा। अल्लाह ताला बचा के रखे हम सबको जुल्म से। आगे है जी, अपने रब की बात कबूल करो। आयत 47 से 48, इस्तजीबू ली रब्बिकुम, कबूल कर लो अपने रब को, या उसके अपने रब की बात को, उसके दीन को, इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिसमें नहीं लौटना किसी का, यानी कोई ला मरद्द लहू मिन अल्लाह ही, यानी जब अल्लाह पकड़ ले तो कोई पलट नहीं सकेगा। और फिर मालक मिम मल जा, कोई जाए पनाह नहीं है उस दिन। क्या पता चला कि इससे पहले कि तुम्हारे वारंट इशू हो जाए, अपनी जमानत करा लो। इस दुनिया में रहकर हम यही कर सकते हैं। फिर आगे बेटे बेटी का इशू है 49 से 50 में, बेटा बेटी होगा कि नहीं, कितना किसका, ये अल्लाह के हाथ में। लिल्लाहि मुल्कु समावाती वल अर्दी यखलुकु मा यशाउ यहबुली में ये शाओ इनासा, वो देता है जिसको चाहता है बेटियाँ, वह यहबुली में ये शाओ जुकूर, और जिसको चाहता है बेटे देता है। ये तो दो किस्में हो गई, कुछ लोगों के सिर्फ बेटे होते हैं, कुछ की सिर्फ बेटियाँ हैं। और युजव्विजुहुम जुकरानम व इनासा, तीसरी फॉर्म वो है कि कुछ बेटे भी दिए, कुछ बेटियाँ भी दी। और एक फोर्थ फॉर्म है, वह यजअलु मन यशाउ अकीमा, जिसको चाहता है उसको बांझ रख देता है, यानी कुछ भी नहीं मिलता। इन्नहु अलीमुन कदीर, तो अब बीवी को ताने देना कि एक और बेटी की हो गई, और अल्लाह रहम करे दो तीन बेटियों के बाद तलाक की धमकी देना, गोया कि बीवी एक मशीन थी जो गलत चीज़ें प्रोड्यूस कर रही है। आज साइंस ने साबित कर दिया कि सेक्स की डिटर्मिनेशन मर्द की तरफ से होती है, मेल क्रोमोसोम्स के जरिए जेंडर बनता है। एक्स एक्स होगा तो बेटी, एक्स वाई तो बेटा, और औरत के पास तो है ही एक्स एक्स, तो मर्द के एक्स में से एक्स एक्स वाई में सेक्स आ गया तो बेटी होगी, वाई आ गया तो बेटा होगा। अब ये बातें कौन समझे? आज भी कितने जाहिल लोग हैं जो औरतों की ज़िंदगी जीरन कर देते हैं सिर्फ इस पे कि बेटी क्यों हुई। और अगर आप कोई ऐसी सास है जो अपने बेटे को प्रवोक कर रही है कि भाई ये इसके इससे तो बेटियाँ ही होती जा रही हैं, अच्छा फिर तुम दूसरी शादी कर लो, और या तुम इसको छोड़ दो, या किसी को इसलिए अकीर जानना कि उसकी सिर्फ बेटियाँ हैं, तो इस पर तौबा करने की ज़रूरत है। फिर आगे 51 से 53, ईमान कुरान के ज़रिए से हासिल होता है। जब हम ईमान के इतने फ़वाद पढ़ते हैं ना, तो एकदम ख्वाहिश आती है, हाय ईमान कैसे बढ़ाऊँ। तो अब यहाँ सूरत पूरी हो रही है और आपको पैगाम दिया जा रहा है कि इस वही के साथ जुड़ जाओ। इसमें एक तो आपको वही के मुमकिन तरीके भी हैं, मुख्तलिफ अम्बिया किराम के पास वही जैसे आई, या फिर नबी सल्लम के पास कभी कैसे आई कभी कैसे आई, तो ये बड़ी अहम आयत है 51, यानी वही के तरीके। उर्दू में हम वही कहते हैं, अरबी में वहश कहते हैं, यानी या पे साइलेंट होता है। तो क्या पता चला? वमा कान अली बशरन अयुकल्लिमहुल्लाह इल्ला वहशन औ मिन वराई हिजाब औ युरसिला रसूलन, यानी कभी ये तरीका कभी वो तरीका। आपको मुझे क्या करना है? इस कुरान से जुड़ना है। आपको इस पूरे पारे में ये थीम दिख रहा है कि अगर तुम दुनिया को इस्लाम देना चाहते हो, तो फिर तुम्हें ईमान लेना पड़ेगा इस कुरान से। इसके बाद एक और खूबसूरत सूरत, सूरत ज़ुख़रुफ़, जिसमें हम मुख्तलिफ चीज़ों को साथ लेकर चल के देखते हैं, और इसकी जो चीज़ें आपके मेरे सामने आती हैं उसको अगर हम महसूस करें तो क्या है? 53 आयात है इसमें। पहली चार आयात में कायनात में फैली अल्लाह की कुदरतें, जो कि अमूमन मक्की सूरतों का अंदाज़ होता है, और ये हामीम से अब सूरतों के जो सिलसिले हैं उसको भी आप नोट कर रहे होंगे। کہ حامیم والکتاب المبین ان جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. قرآن کا نزول کس لیے؟ تاکہ تم اس کی عربی زبان کو سمجھو اور اس پہ غور و فکر کرو. قرآن کو اگر آپ صحیح معنوں میں پڑھ جائیں نا تو یہ پوری کائنات آپ کے لیے کتاب بن جاتی ہے. کبھی آپ سورج کو دیکھ کے, کبھی چاند کو, کبھی بادلوں کو دیکھ کر اتنی انیوژل چیزیں دیکھتے ہیں کہ آپ کا دل پکار اٹھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ. پھر اس کے بعد آیت نمبر 5-8 میں مشرکین مکہ کے لیے دھمکی ہے. اللہ کے نبی کو ستاتے تھے, کبھی یہ کبھی وہ. اللہ کہتے سنو, یہ کوئی تمہارے پاس پہلی دفعہ نبی نہیں آیا. جن کے پاس پہلے انبیاء کرام آئے تھے, وما یاتیہم من نبی الا کانوا بہ یستہزئون, انہوں نے بھی مذاق ہی اڑایا تھا. نتیجہ کیا نکلا؟ فاخلقنا اشد منہم بدشا, پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا, ان کی پکڑ کر دی. اور یہ عادت تو پہلوں کی گزر گئی, تو جھٹلانا کوئی نئی بات نہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا, سبھی بچے تنگ کرتے ہیں ماں باپ کو. عموماً انبیاء کرام کی قومیں ان کی بات نہیں مانتی. یہ الگ بات ہے کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کو ہیرو بنا کے کچھ خاص دنوں کے ساتھ ان کو پوجنے بھی لگ جائیں چاہے. پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احسانات کا تذکرہ ہے آیت نمبر 9-14 میں. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ, اور اگر آپ ان سے سوال کریں, کیا من خلق السماوات والارض, کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو, جواب کیا دیں گے؟ کیا ہمارے بتوں نے؟ نو, لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ, یہ بھی نہیں کہا کہ خالق, یہ بھی نہیں کہا اللہ. یعنی پتہ چلا کہ اللہ کے سارے نام بھی آ رہے ہوتے ہیں اور بندہ اس وقت بھی شرک کر رہا ہوتا ہے. بھائی جب آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا ہے, اس زمین کو بچھونا بنا دیا, تمہارے لیے راستے بنا دیے تاکہ تم ہدایت پاؤ, پھر آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا اندازوں کے ساتھ, پھر اس سے مردہ شہروں کو زندہ کر دیا, اسی طرح تم نکالے جاؤ گے قبروں سے. اور وہی ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو, تاکہ تم اس پہ ٹک کے بیٹھ جاؤ اور ان کی پشتوں پہ بیٹھ کر تم اپنے کام کرو. اور یہاں وہ دعا رہی ہے, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. تو ادھر اس کی سلائڈ بنا دیجئے. کیا سواری کی دعا ہم سب پڑھتے ہیں, آنی بھی چاہیے, بچوں کو بھی یاد کروائیے. آپ کے پاس ریفرنس آ گیا, سورت زخرف آیت نمبر 13 اور 14. اور یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو تسلیم کرنا ہے. پھر بیٹی کی پیدائش پہ غم کرنے کی بات دوبارہ اس صورت میں آ رہی ہے بیٹی کے تذکرے میں 15-17. اصل میں مکہ میں ایک گروہ تھا, ایک ایسا قبیلہ تھا جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتا تھا. تو یہ سارا کچھ اسی پہ ہے کہ تمہیں تو بیٹی اچھی نہیں لگتی اور اللہ کے لیے تم بیٹیاں بناتے ہو. نعوذ باللہ, اللہ کو نہ بیٹی کی ضرورت ہے نہ بیٹے کی. سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھ گئے ہیں کہ بیٹے کی بات کہنے پہ بھی اللہ کو غصہ آتا ہے. تو بیٹی بیٹا اصل میں تمہارے لیے, تو بیٹیوں کی پیدائش پہ خوشی منائیے, یہ بڑی رحمت ہے. اکثر آپ دیکھیے کہ بڑھاپے میں بیٹے تو اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور بیٹیاں بیچاری دوسرے گھروں میں ہونے کے باوجود ماں باپ کی محبت میں تڑپتی ہیں. پھر آگے 18-19, عورت صنف نازک ہے. اب یہاں ذرا سے عورت کے عورت پنے کو محسوس کیجیے گا. اوامئی یونش فل کھل جاتی, کیا وہ جو پالی جاتی ہے زیورات میں, ہاں جھگڑے کا وقت آ جائے تو بات ہی نہیں کھول کے بیان کر سکتی. یہ ہے جی عورت کی خوبی یا خامی. بعض لوگ بڑے ناراض ہیں اس پہ. دیکھو دیکھو اللہ نے کہا کہ عورت جھگڑے میں اپنی بات نہیں بیان کر سکتی, تو یہ خوبی ہے کہ خامی؟ دیکھیے عورت نازک ہے, معصوم ہے, روئی پڑتی ہے, ایموشنل اتنی ہو جاتی ہے, اپنی بات کھول کے نہیں بیان کرتی, تو یہ تو اس کی جھجک ہے. یہ لکھا جاتا ہے ادھر کہ عورت ہے جو جھگڑے میں خوب ترکی بترکی جواب دیتی ہے, خوب ایک ہی چار سناتی ہے. نہیں, دوسری بات ہے کہ زیورات پہننا عورت کی شان ہے. ہاں اس کی تبرد اور اس کی نمائش نہیں جائز کہ غیر مردوں کو دکھاتے اور سنتے رہیں. آج کے دور میں عورت کو مرد بنایا جا رہا ہے غیر محسوس طریقے سے. بچپن سے بچیوں کے ڈریس کو دیکھیے آپ, جب آپ کی بچی گھریلو کپڑے, دیسی اور مشرقی کپڑے پہنتی ہے, آج بھی کوئی جوڑا بنایا ہوگا آپ نے, جو اس نے کبھی آپ نے اس کو عید کے دن پہنانا ہے یا آپ نے اس کو کسی مہندی پہ اور اپٹن پہ پہن کے لے جانا ہے, اس کے ساتھ ساتھ چوڑیاں آتی ہیں. بچی کو مہندی لگتی ہے, اس کو چھوٹے چھوٹے ٹاپس پہناتے ہیں. لیکن جب آپ بچی کو ویسٹرن کپڑے پہناتے ہیں, اب وہ ٹائٹ پینٹ پہنی ہے, اس کے اوپر چوڑیاں اچھی لگیں گی؟ یہ مسئلہ ہوا. جب ڈریس کوڈ بچیوں کا غلط ہوا نا, तो फिर औरत पना ख़त्म हो गया। आज की बच्चियाँ कहती हम जेवर नहीं पहनते, यहाँ तभी भी पहनते होंगे, सोना चांदी शादियों में कितना चलता है। बाहर की बच्चियाँ कहती हमें नहीं चाहिए। एक बच्ची की शादी थी, कहने लगी अम्मी मैंने सोना नहीं लेना। माँ ने कहा अल्लाह का शुक्र, कहती लेकिन डायमंड लेना है। उसको पता है कि वो छोटा सा एक में भी फ्यू कैरेट का डायमंड है, तो वो सोने के बड़े से सेट से भी महंगे हैं। गोरों को देख कर हल्के फुल्के कपड़े, सी थ्रू और जेवर ना पहनना आम हो गया, और आज को जेवर पहने कहते बेवकूफ लगता है। नहीं, वो औरत लगती है। आप देखिए कि एक मर्द और औरत के बीच में जो अल्लाह ने कशिश और बोन बनाया ना, वो चीज़ औरत के पास जो मर्द के पास नहीं है। तो आप एक मर्द के मुकाबले में एक मर्द खड़ा कर दें तो उसमें क्या कशिश है। अल्लाह के नबी ने एक मौके पर हज़रत उसामा के लिए कहा, जब बेबी थे वो रो रहे थे, तो आपने कहा उसामा लड़की होता तो हम उसको अच्छे कपड़े पहनाते, उसामा लड़की होता तो हम इसको जेवर पहनाते। तो जेवर पहनना पहनाना बच्चियों को बुरी बात नहीं है, लेकिन शुरू से उनको लिमिट्स बताइए कि किधर दिखाना है और किधर नहीं। फिर आगे बाप दादा की पैरवी की बातें हैं, आयत 20 से 25 में। वही धान के पान, 100 बातों की एक ही बात जी हमारे बड़े जी करते थे, हम क्या करें। इन्ना बजत ना बा ना अला उम्मतिन व इन्ना अला सारी मुख्तद, हम तो जी वही करेंगे जो वो करते थे। अल्लाह कहते हैं अगर वो ना समझ होते, उन तक बेचारों तक इल्म नहीं गया, आपकी दादी इतनी बड़ी लिखी थोड़ी थी, आपके पास कुरान आ गया, कहते ना जी ना। तो आगे अल्लाह ताला फिर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, के दीन इब्राहिम तो खालिस तौहीद वाला था, हालांकि इब्राहिम एक ऐसे घर में पैदा किए गए थे जहाँ शिर्क था। तो आए 26 से 30 में देखते हैं तो क्या पता चला कि बाप दादा का नाम लेकर अगर शिर्क को ही रिवाज देना होता तो सबसे ज़्यादा इसका हक इब्राहिम अलैहिस्सलाम को था। तो क्या पता चला कि बड़ों की अच्छी बातों को तो कबूल करना है और बुरी को छोड़ना है। आज क्या किया हमने, उनकी अच्छी सब छोड़ दी। आज अम्मा के गरारे सब चले गए, वो 9-9 गज के दुपट्टे गए, उनके वो सादे सीधे घर में इस्तेमाल के कपड़े कोई नहीं पहनता। अम्मा के वक्त का सोफ़ा पता नहीं किधर चला गया। अम्मा के दौर के खाने भी अब कोई नहीं खाता पकाता, भारी लगते हैं हाँ। और अम्मा की वो बातें ले ली जो कि नहीं लेनी थी। तो हमेशा याद रखिए इंसेस्टर वर्शिप जो है ना, वो बदतरीन तरीका था जिसकी वजह से लोगों ने खुद को नहीं बदला। फिर उसके बाद अल्लाह जिसे रखे जिसे चाहे अपने दीन के लिए चुन ले, यानी अल्लाह जिसे चाहे अपने दीन के लिए चुन ले। 31 से 32 है। अल्लाह के नबी पर एक एतराज़ करते थे कि ये तो गरीब यतीम ये कैसे नबी बन गए। वक़ालु लौला नुज़िला हाज़ल क़ुरानु अला रजुलिन मिनल क़रयतैनि अज़ीम, अगर वाकई अल्लाह ने नबी बनाना था किसी को, वो तो उसको बनाता जो के बड़ा अच्छा खाता पीते घर का था। ताइफ के बड़े बड़े लोग जिनके वहाँ विलास थे और जो बड़े एक खूबसूरत बागात के मालिक थे उनके नाम लेते थे। क़रयतैन में जो दो शहरों की बात आती है ना, तो इसमें किताबों में ताइफ का नाम आता है। ताइफ ऐसे ही जैसे आज हमारा नॉर्दर्न एरिया, मरी, सवात हाँ, तो वहाँ इन लोगों के रिजॉर्ट्स थे। तो कहते थे कि अगर अल्लाह ने नबी बनाना था तो फिर इनको बनाते, हमें हमें तो समझ नहीं आ रही इनकी क्या। तो अल्लाह कह रहे कि तुम्हें क्या पता, अहुम यकसिमून रहमत रब्बिक, नहीं, नाहनु कसमना बैनहुम, हमने बांट की है उनके बीच में मईशत, अहुम उनकी मईशत फिल हयात दुनिया, यानी किसको नबी बनाना किसको नहीं, किसके पास पैसा होगा किसके पास नहीं, ये फैसला अल्लाह करेगा। फिर इसीलिए दुनिया में अल्लाह कभी कभी सब गैर मुस्लिमों को और नाफरमानों को भी दे देता है, क्योंकि अल्लाह की निगाह में दुनिया की हकीकत मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। आए 33 से 35 में इसी हकीकत को देखेंगे। बहुत ही खूबसूरत आयत है ये भी, अगर आप नोट करें ना, अल्लाह कहते हैं सारे लोग एक ही बन जाते, यानी सब तौहीद पे होते, लेकिन फिर भी कुछ लोग रहमान के साथ कुफर करते हैं। हम चाहते तो उनके घर ली बुयूतिहिम सुकुफम मिन फिद्दा, उनके घरों की छतें चांदी की होती। फिज्जा कहते हैं चांदी, पत्रियाँ बिखरने वाली चीज़। वह मारी जा रही है यस्खरून, और सीढ़ियाँ यानी उनके घरों की छतें और सीढ़ियाँ चांदी की होती। वली बुयूत ही मबाबम व सुरूरन अलैहा यत्तकीऊन व ज़ुख़रुफ़न, उनके घरों के दरवाजे उनकी मसहरियाँ जिन पे वो तकिए लगाए होते ये सोने के होते। इमेजिन तो कीजिए कितने लोग होते जो ईमान पे कायम रहते। आज मट्टी और चूने के घरों की वजह से बंदा नाफरमानी पे चला जाता है। अगर आपका घर मट्टी का और साथ आपके नेबर में क्रिश्चियन या ज्यू या एथियस्ट और इसी तरह बिल्कुल बेदीन और उसका घर सोने का, और वो इसको मैं ये घर जी सिर्फ नॉन मुस्लिम्स को मिलना है, ये घर सिर्फ जी मुजरिमों को मिलने हैं, तो कितना बड़ा इम्तिहान था मुसलमानों का। और आज भी शैतान ऐसे काम कराता है, जितना मर्जी समझ आ जाए कि सूद हराम है हराम है, लेकिन फिर भी आप अपने बड़े घरों के शौक में अल्लाह को नाराज़ करते हैं। तो अगली आयत में शैतान के मुसल्लत होने की बात है, 36 से।